संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तमाल का चंद्रहास चरित्र का हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। प्रथम श्रोता आप हैं श्री राधे श्याम सीताराम, दूजो हैं रसखान। जय श्री राधे श्याम। तो भक्तमाल के प्रथम श्रोता भगवान श्री हरि होते हैं और द्वितीय रसखान माने जाते हैं, बाकी फिर सभी संत भक्त जन होते हैं। तो चंद्रहास का द्वितीय पार्ट चरित्र का शुरू करते हैं। चंद्रहास पहुँच चुका है मदन सेन के यहाँ। मदन सेन ने वो पत्र देख लिया है। पढ़ने के बाद उसमें लिखा था कि ये कार्य उचित है या अनुचित, इसे अति शीघ्र करें, विचार ना करें। तो आज्ञा मान के अपने पिताजी की। मदन सेन भी चंद्रहास से मिलकर यही चाहता था कि मेरी बहन को इससे सुयोग्य वर कभी नहीं मिलेगा। और मदन सेन ने जब चंद्रहास को देखा, उसके मन में भी आया कि मैं तो अपना सर तक दे दूँ ऐसे व्यक्ति को, वो इतना सुंदर है, सदचरित्र है। तो उसको देख करके मदन सेन भी उस पर पूरी तरह अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार है कि ऐसा सदपुरुष कोई नहीं मिलेगा, मेरी बहन को इससे अच्छा सदपुरुष नहीं मिल सकता। तो बड़ी धूमधाम से उसने उसके विवाह की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी शुरू हुई, विवाह संपन्न होने को ही था कि तभी पहुँच गया मंत्री, दुष्ट मंत्री वहाँ पहुँचा। विवाह संपन्न हुआ और उसने देखा, अरे ये क्या हो गया। सबसे पूछा, मदन सेन को बुलाया कि ये तो आपने ही दिया था, वो पत्र दिखाया, पत्र में लिखा था विष की जगह विषा किया हुआ था। तो मंत्री को समझते देर नहीं लगी कि ये मेरी पुत्री ने कर दिया है, मेरी पुत्री इस पे आसक्त है। तो जो मेरे शत्रु पर आसक्त है उस मेरी पुत्री को तो विधवा होना ही चाहिए, और ये मन में ठान चुका कि इसका वध मैं करूँगा। लेकिन भगवान करने वाले हैं सब, तो इसने क्या रचा कि माता के मंदिर में, कि हमारे वहाँ पे उनकी कुलदेवी का एक मंदिर है बाहर की तरफ राज्य के, कि राज्य से थोड़ा बाहर निकल के राज्य में ही जो इनका सिटी है, जो भी केंद्र है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही उसके बाहर, नगर के बाहर एक मंदिर बना हुआ था कि तुम जैसे ही नगर के बाहर जाओगे, नगर के बाहर जो मंदिर है उसमें तुम्हें पूजा करनी है और पूजा अकेले होती है, यह हमारे विधान है। तो इसको भेज दिया चंद्रहास को अकेले पूजा करने के लिए, और वहाँ उसने बैठा दिए अपने दो चंडाल मारने के लिए। तो वो तैयार है वहाँ मारने के लिए, चंद्रहास अकेला निकल पड़ा है। इधर विवाह संपन्न कराते ही मदन सेन यहाँ जो कुंतलपुर के जो राजा थे उनके पास पहुँच गया था मिठाइयाँ और उपहार लेकर कि हमारी बहन का विवाह हुआ है, आशीर्वाद दीजिए आप। उसने जब ये देखा, उसी समय जब ये मदन सेन कुंतलपुर के नरेश के पास पहुंचा था, उसी समय वहां पर गालव ऋषि आए थे। गालव ऋषि कुंतलपुर नरेश के पुरोहित थे, तो उनके पुरोहिती का सारा कार्य करते थे। तो गालव ऋषि से वो विचार विमर्श कर रहे थे कि भाई मेरी आयु भी हो चुकी है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं कब तक राज्य संभालूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि राज्य का सारा कारोबार अब किसी को दे देना चाहिए, लेकिन मेरे पुत्र भी नहीं है, तो ये राज्य का सारा कारोबार मैं किसको सौंपूं। तो यही विचार विमर्श वो गालव ऋषि के साथ कर रहे थे। गालव ऋषि ने उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए, मैं भी इसीलिए यहाँ पे आया हूँ ये बताने के लिए कि ये जो समय है ये बहुत ही सुंदर समय है अभी राज किसी और को देने का। तो इस बार क्या हुआ कि भाई आप ऐसा कीजिए कि ये अपना जो सारा राजपाट है ये सब आप किसी को दीजिए। वो बोले, जी कौन है वो जिसको ये देना चाहिए और इस मुहूर्त में। उन्होंने कहा, अभी अभी आपके जो मंत्री हैं उनके दामाद हैं चंद्रहास, आप उनको बुलाइए, वही चक्रवर्ती सम्राट बनने के योग्य हैं, और उनको अपना सारा राज्य और अपनी पुत्री दे दीजिए, यानी अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए, और यही समय उचित है। वहीं पर मदन सेन थे। मदन सेन को तुरंत राजा ने कहा कि आप अपने जो बहनोई हैं जिससे शादी करी है, अपनी अपनी बहन का विवाह किया है, उसको आप तुरंत समाचार दीजिए और तुरंत यहाँ पर भेजिए। तो ये यहाँ से देरी ना करते हुए, क्योंकि इसका बहनोई चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा और राजाओं को कोई भरोसा नहीं है, अभी मन में है फिर बदल जाए, तो ये इतनी शीघ्रता से यहाँ से निकला कि मैं जाके उसको समाचार दूँ। इधर से वो भी नगर के बाहर मंदिर में जा रहा था, इधर से ये राजा के पास से नगर में प्रवेश कर रहा था, तो दोनों बीच में मिले। इसने पूछा चंद्रहास से कि आप कहाँ? वो बोले कि मंदिर में जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपके पिताजी ने कहा है कि विवाह के तुरंत बाद पूजा करनी होती है। वो बोले ठीक है, आपके लिए पूजा तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, आप तुरंत पहुँचिए नरेश के पास जो चक्रवर्ती सम्राट हैं उनके पास, और वो अपनी पुत्री का विवाह आपसे करेंगे और समस्त राज्य का अधिपति आपको बनाएंगे, यानी चक्रवर्ती सम्राट आप बनने जा रहे हैं। तो चंद्रहास ने कहा भी कि पहले पूजा को बोला नहीं, समय हमें बिल्कुल भी इसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप तुरंत निकलो। तो ये मदन सेन के कहने से चंद्रहास पहुंच गए राजा के यहाँ, और उसके बदले मदन सेन चला गया पूजा करने। अब मंत्री ने उनको अपने चंडालों को कहा था कि जो भी पूजा करने आए उसे ख़त्म कर देना। अब अंधेरा था मंदिर में, जैसे ही वो झुका माता के चरणों में उन्होंने उसकी गर्दन काट दी, तो मदन सेन वहाँ पे हो गया ढेर। और इधर ये पहुंचा तो इसको वहाँ रात में ही उन्होंने इसका विवाह संपन्न कराया, और इसको चक्रवर्ती सम्राट, जैसे ही सुबह सुबह मुहूर्त हुआ, गालव ऋषि ने वहीं पे उनके सामने इनको चक्रवर्ती सम्राट कर दिया, राज तिलक इसका कर दिया। तो देखिए भगवान का कैसा विधान है, भगवान की चाही होती है। यहाँ पर उसने कितना षड्यंत्र रचा इसे मारने का कि इसको मार देते हैं, लेकिन वो बना चक्रवर्ती सम्राट। कि हमारी चाही नहीं होती है, अपन चाहत होत नहीं, हरी चाही तत्काल, तो अपनी चाही नहीं होती है। इस पर एक दृष्टांत याद आया भगवान श्री हरि का। एक बार भगवान श्री नारायण गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे भगवान शिव से मिलने। तो हरिद्वार के आसपास कहीं नीचे की तरफ जब गरुड़ जी ने देखा तो एक गांव में एक ही घर में दो बारात आई हुई थी। तो गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, प्रभु यहाँ तो एक ही घर में दो दो बारात आई हुई है एक ही लड़की के लिए। बोले हाँ, एक इसकी माँ ने बुलाया हुआ है वर, एक पिता ने बुलाया हुआ, पिता किसी और से चाहता है, माँ किसी और से चाहती है अपनी कन्या का विवाह करना। तो गरुड़ जी बोले कि विवाह किसके साथ होगा? भगवान कहने लगे कि जो माँ ने बुलाया विवाह उसके साथ होगा। अब गरुड़ जी चलते चलते सोचने लगे कि अगर मैं बदल दूँ तो भगवान का कथन असत्य होगा, और मैं आज करके देखता हूँ कि देखते हैं भगवान का कथन असत्य होता है क्या। तो मन में वो विचार करते हुए कैलाश पर्वत आया, भगवान को कैलाश पर्वत पर छोड़ दिया उन्होंने, और स्वयं गरुड़ जी आ गए इस गांव में। और उन्होंने भी अपने दिमाग में एक तैयार करी नीति कि जो ये माता का बुलाया हुआ दूल्हा है, क्यों ना मैं इसको उठा करके कहीं बाहर छोड़ाऊँ, तो फिर जो यहाँ दूल्हा होगा इसका विवाह तो उससे ही होगा। तो उन्होंने जो माता को बुलाया हुआ दूल्हा था, गरुड़ जी ने उसको उठाया और उठा करके उसको गंगा नदी के तट पर छोड़ आए। वो एक जो पर्वत था, पर्वत के किनारे गंगा नदी के तट पर छोड़ दिया उसको। उन्होंने सोचा कि अरे वहाँ तो सब लोग बाराती पता नहीं क्या क्या खा रहे होंगे, कितनी बढ़िया मिठाइयाँ मिष्ठान और फल फ्रूट्स होंगे, और यहाँ पर ये बेचारा भूखा मर जाएगा। तो उनके मन में आया चल थोड़ा इसके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था भी कर देता हूँ। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तगड़ा फलों का भरा हुआ और मिठाइयों का भरा हुआ, उसमें सभी भोजन सामग्री थी, एक सब पैक किया हुआ था बहुत बड़ा। तो उन्होंने देखा कि अरे ये इसमें बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, ये तो बहुत दिन चल जाएगा इसके लिए, तो ऐसा करता हूँ इसे उठा ले जाता हूँ। तो उसने, वो बहुत भारी था, वो सब मिठाइयों का और फलों का और जितनी भोजन सामग्री थी वो सब उठा करके गरुड़ जी ले करके उसके पास रख दिया। वहीं रखा तो जैसे ही वो उसमें से कुछ निकालने लगा तो उसमें से एक लड़की उठ खड़ी हुई, और यही वो लड़की थी। उसने देखा अरे ये तो, ये मेरे से क्या हो गया, मैं लड़की उठा लाया। और ये लड़की किसने रखी थी? इसकी माँ ने, क्योंकि वहाँ दूल्हा मिल नहीं रहा था। इन्हें लगा, माँ को लगा कि अब जो पिता का आया हुआ दूल्हा उसके साथ इसका विवाह हो जाएगा, तो अपनी लड़की को छुपाने का कोई जगह ना मिली, तो उसने जहाँ पे फल और ये विवाह वालों के लिए जो सामग्री जानी थी उसमें अपनी बेटी को छिपा के ऊपर सारी वही जो मिठाइयाँ हैं फ्रूट्स हैं वो सब रख दिए थे। लेकिन भगवान की, वही भगवान की सोची होती है, तो भगवान नारायण की इच्छा थी इनका विवाह। गरुड़ जी को लगा कि जब ये यहाँ लड़की आई गई है तो चलो इनका विवाह करा देते, तो गरुड़ जी पुरोहित बन गए और उनका वहाँ विवाह संपन्न कराया। ये करने के बाद गरुड़ जी पहुँचे जब कैलाश पर्वत पे भगवान को लाने, तो भगवान को सारा वृतांत बताया कि प्रभु ऐसे ऐसे करके मैं तो उसको वहाँ छोड़ के आया था और वो तो विवाह मुझे ही कराना पड़ गया, मैं ही पुरोहित बना उसमें। तो भगवान मुस्कुराए और बोले उस लड़की की यही इच्छा थी कि मेरे पार्षद के द्वारा ही उसका विवाह हो, तो यही तो सोचा हुआ था हमने और वही हुआ। तो भगवान का सोचा हुआ ही होता है, कोई अपनी बुद्धि कितनी भी लगा ले, होना वही है जो श्री हरि नारायण सोचते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ, उसको चक्रवर्ती सम्राट बना दिया चंद्रहास को। जब चंद्रहास यहाँ से निकल गया विवाह करने के बाद, और ये अपने मंत्री के यहाँ पर पहुँचने वाला है, जब सुबह ही मंदिर के दरवाजे खोले गए तो वहाँ पता चला कि ये तो मंत्री का लड़का मदन सेन मरा हुआ पड़ा है। ये खबर मंत्री को दी गई। मंत्री आया, मंत्री को इतना दुख हुआ कि उसने बड़े ज़ोर से अपना सर पटका, उसका सर फूटा, वो भी वहीं ढेर हो गया। तो दोनों वहीं पे मर गए। जब इसको चंद्रहास को ये पता चला तो वो भी मंदिर पहुँचा। मंदिर में देखा उसने माँ शक्ति के सामने ये सब, तो उसने माँ से प्रार्थना की चीख कर कि हाँ मरना तो मुझे था माँ, और इन दोनों ये बेचारे दोनों मारे गए, और षड्यंत्र मेरे नाम का था, तो माँ आप इन दोनों को जीवित कीजिए, चाहे मेरे प्राण ले लीजिए। तो माँ शक्ति ने कहा कि आप वरदान मांगिए। उन्होंने कहा कि मेरा प्रथम वरदान तो यह है कि मैं कभी भी श्रीहरि को ना भूलूँ, और द्वितीय वरदान इन दोनों को जीवित कर दीजिए। माँ शक्ति की कृपा से वो दोनों उठ खड़े हुए। और अब दुष्ट मंत्री ने भी देखा कि हमने षड्यंत्र किया था इसकी मृत्यु का, इसने हमें जीवित किया है, तो उसका भी मन बदल गया और उसने क्षमा मांगी चंद्रहास से। चंद्रहास ने ये मन पे लिया ही नहीं, सब गले मिले। इसके बाद चंद्रहास चक्रवर्ती सम्राट हुए और बहुत अच्छे से राज्य करने लगे। इनके राज्य में सभी लोग बड़े भक्त हुए, इन्होंने भक्ति का बड़ा प्रचार और प्रसार किया, इनकी भक्ति की दूर दूर तक कथा हुई। इनके दो पुत्र मकरध्वज और पद्माक्ष हुए, वो भी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। एक बार की कथा है कि जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तो यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था वो घोड़ा इन्होंने चंद्रहास ने पकड़ लिया, इस कारण से कि वो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के दर्शन करना चाहते थे। अपने पुत्रों को बोला, मकरध्वज ने घोड़ा पकड़ा, और जब घूमते हुए अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण जी का इस एरिया में आया, पता चला घोड़ा पकड़ा हुआ है चंद्रहास ने, तो युद्ध के लिए सब सेनाएं तैयार हो गई। चंद्रहास ने प्रस्ताव भेजा कि अगर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के हमें दर्शन हो तो हम घोड़ा दे देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि यहाँ पे हमें मैत्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े भक्त हैं, ये हमसे हारेंगे नहीं, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो अर्जुन ने प्रस्ताव स्वीकार किया और ये फिर आपस में मिले। भगवान के चरणों में चंद्रहास गिरे और इन्होंने बड़े प्रेम से भगवान की सेवा की, और भगवान श्री कृष्ण जी ने चतुर्भुज रूप में इनको दर्शन दिए थे। तो ऐसे हुए चंद्रहास भक्त, एक से एक भगवान के बढ़कर भक्त हैं। बोलो चंद्रहास जी महाराज की जय। श्री राधे राधे। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नए भक्त की कथा के साथ। श्री राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।